रिकॉर्डिंग चालू, एक दो तीन चालू, फिर बंद करना नहीं बंद कर देता। हरे कृष्णा। तो आज उत्थान एकादशी कार्तिक महीना का ये अंतिम एकादशी है। उत्थान एकादशी जिस एकादशी तिथि में भगवान जागृत होता है, आज बड़ा पवित्र दिन है। एक तो कार्तिक महीने का अंतिम पहुंच गए, आज उत्थान एकादशी में आज भगवान का जागरण, साथ साथ आज का भीष्म पंचम व्रत भी चालू है 5 दिन का, जिसके ऊपर द्रौपदी जी वर्णन भी किए कि जिन्होंने एक महीना ये व्रत उद्यापन नहीं कर पाते, उजा व्रत को जिनके लिए तकलीफ होता है एक महीना को ये व्रत को अच्छे तरीके से स्वीकार करना, तो उनके लिए ये 5 दिन का अगर जो व्रत होता है जिसको कहते हैं कि भीष्म पंचक व्रत, जो व्यक्ति भीष्म पंचक व्रत की स्वीकार कर लेते हैं 5 दिन का, वो पूरा एक महीने का फल भी मिलते हैं। और साथ साथ श्री प्रभुपाद जी ये भी वर्णन की कि भीष्म पंचक व्रत का फल क्या होता है, नहीं 5 दिन का व्रत अगर कोई व्यक्ति बड़ा निष्ठा पूर्वक करे, जैसा 5 दिन में पंच गोबो को लेना पड़ता है, इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जैसा महाराज ने उस दिन बताया भी था कि हरि भक्ति विलास ने किस तरीके से भीष्म पंचक व्रत का वर्णन भी किया है विषय रूप से, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि 5 दिन का जो व्रत है कोई भी व्यक्ति जितने भी पापी हो पखंडी हो जितने भी निष्ठुर व्यक्ति हो जो भी भक्ति मार्ग में भी नहीं है, अगर कोई भी तरीका से कोई संघ का प्रभाव से अगर 5 दिन का भीष्म पंच व्रत को पाल लिए तो ये जीवन में भगवान का धाम तक पहुंच सकते हैं। ये भीष्म पंच व्रत का इतना साथ साथ आज हमारा महान आचार्य गौरी संप्रदाय का महान आचार्य श्री गौर किशोर दास बाबू जी महाराज का तिरुभाव तिथि, तो आज का ऐसा निर्धारित रूप से प्रोपाल लीला भी तो पाठ होता है, तो साथ साथ मैंने विचार भी किया हूँ कि आज उपवास भी है 12 बजे तक, किसी का कोई प्रसाद का भी टेंशन नहीं है, तो 12 बजे पुष्पांजलि गौर की श्रद्धा गौर जी गौ पर, उसके बाद ही प्रसाद है सबको। तो मैं विचार किया कि पहले प्रभुपाद जी का लीला में इसको आधा घंटा पढ़ के बाद में गौर किशोर दास बाबू जी महाराज को पर थोड़ा चर्चा करूंगा, क्योंकि ये हमारे गौरी आचार्य है, तो गौरी आचार्य के ऊपर हम लोग को जानकारी प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो हम लोग के भक्ति मार्ग में किस तरीके से आगे बढ़ना है ये शिक्षा को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गौर किशोर दास बाबू जी महाराज ऐसे एक महान आचार्य जिन्होंने कभी किसी के पास भीख मांगकर कुछ भी खाया नहीं था। शमशान भूमि में जलाने के लिए जो मृतदेह वगैरह आती है, जो उसी का कपड़ा लेकर अपना कौपिन पहन के वो अपना जीवन को विदा है। आज कभी कभी कोई सज्जन व्यक्ति से कुछ अगर चावल वगैरह मिल गए तो उसी चावल को पानी में डालकर उसके अंदर नमक डालकर खा लेते थे। ऐसा एक विद्वान सज्जन व्यक्ति जिसका नाम है गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, जिन्होंने कार्तिक महीना का उत्थान एकादशी तिथि में शाम का समय उनका तिरुभाव हुआ था। आज एक महान पवित्र दिन है कार्तिक महीना, एक तो उत्थान एकादशी, दूसरा विष्णु पंचम, तीसरा गौर किशोर दास बाबू जी महाराज का तिरुभाव। तो श्री भोपाल जी उत्थान एकादशी का ऊपर वर्णन की एक जगह में कोटेशन में लिखे हैं कि उत्थान एकादशी ऐसा महान पवित्र दिन है जिस दिन में कुछ भी अच्छा कोई शुभ काम करने के लिए आपको मुहूर्त देखने का भी जोड़ी नहीं होता है। जैसे कि अक्षय तृतीया होता है कि अक्षय तृतीया का दिन कोई मुहूर्त देखने का जोड़ी नहीं बनता है, पूरा दिन भर ही शुभ रहता है। उसी तरीके से उत्थान एकादशी ऐसा एक महान दिन गौरियों हिसाब से, जो कि जिस दिन में आप कुछ भी शुभ कर्म करें तो इसके लिए कोई मुहूर्त देखने का कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आज का दिन स्वयं भगवान का जागरण जिसको कहते कि उत्थान। तो आइए आज हम लोग गोपाल लीला में पहले पाठ कर लेते हैं। तो आज का जो है नई जगन्नाथपुरी, सबको पता होगा कि श्रील प्रभुपाद जी उसी समय अपना शिष्यवृंद को लेकर ज्यादा से ज्यादा जगन्नाथपुरी नहीं जाते थे दर्शन करने के। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जगन्नाथपुरी जिन्होंने दर्शन किया उनको पता होगा, उसी जगह में लिखा है मेन गेट का सामने, दिस इज प्रोटेक्टेड प्लेस एंड स्ट्रिक्टली ओनली फॉर द हिंदूज, मतलब जो हिंदू व्यक्ति है उनके लिए ये जगन्नाथ मंदिर का द्वार खुला है। दूसरा कोई भी संप्रदाय को जगन्नाथ मंदिर में आज तक अंदर जाना मना है, सिर्फ हिंदू बिना दूसरा कोई भी व्यक्ति आए तो उनको जगन्नाथ मंदिर का अंदर जाना मना है। जिस नियम में श्री प्रभुपाद जी सबसे दुखी थे, क्योंकि उनका इतने सारे विदेशी शिष्य को लेकर वो जाते थे हर समय हर जगह में दर्शन करके लेकर आए, एक्सेप्ट ओनली दिस प्लेस दैट जगन्नाथपुरी। इस जगन्नाथपुरी में श्री प्रभुपाद जी अपना विदेशी शिष्य को लेकर ज्यादा नहीं गए। क्यों नहीं जाने का एक ही कारण था कि उसमें लिखा है कि ये जगह सिर्फ हिंदू व्यक्ति के लिए, और गोपाल जी का उसी समय अधिक से अधिक सब विदेशी शिष्य थे, और विदेशी शिष्य को जिसका गोरे गोरे हैं तो गोरे व्यक्ति का अंदर जाना मना है, एकदम कड़क नियम है। इसलिए गोपाल जी कहते कि जगन्नाथ जी का दरबार में सामने बैठकर जगन्नाथ जी का सामने कुछ भेदभाव नहीं होता, लेकिन जगन्नाथ जी का पंडा जगन्नाथ जी का अति वो प्रिय है। तो कोई उनको शिष्य ने एक बार पूछा भी था, जो कि आज का ये लीला कथा में इसका वर्णन भी है, जिसका संबंध है कि नई जगन्नाथपुरी, इस अध्याय में इसका वर्णन भी किया है कि श्री प्रभुपाद को एक बार उनका एक विदेशी शिष्य ने पूछने लगी कि प्रभुपाद आपने हर जगह में हम लोग को लेकर गए दर्शन करने के लिए, लेकिन दिस इज ए वन टाइम ऑफ सच प्लेस, एक ही जगह है जहां पे हम लोग को अंदर जाना माना है। तो इस जय श्री श्री राधा कृष्ण हरि भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गोविंद राय की जय। तो श्री प्रभुपाद जी ने बताया इसके लिए दुख होने का कुछ कारण नहीं है। जगन्नाथ जगतेर नाथ, पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने धारण करके रख दिए है। लेकिन अगर अपना भक्ति अच्छे से हो तो एक दिन जगन्नाथ अगर आपने अगर प्रेम से जगन्नाथ जी को बुलाएंगे तो स्वयं जगन्नाथ जी इसी जगह को छोड़कर अपना जगह में पहुंच जाए। और देखिए श्रील प्रभुपाद ऐसा एक नित्य सिद्ध व्यक्ति जिनका मुखारो बिंद से जो वचन निकले हैं उसी वचन को भगवान ने पूरा कर दिए कि पहले विदेश में कभी नहीं गया था जगन्नाथ जी। और विदेश में ही श्रील प्रभुपाद जी के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन मित्र संघ का पहली रथ यात्रा चालू हुआ था सैन फ्रांसिस्को 1967 किस तरीके से रथ यात्रा चलो, देखिए किस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी उधर पहुंच गए। जिन्होंने अमेरिका गए उनको पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में एक जगह है जिस जगह का नाम है रूरल इंडियन मार्केट। तो रूरल जैसे हमारा इधर सब मॉल वगैरह आजकल हो गए मॉल कॉन्शियसनेस, तो हर जगह में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में एक जगह है जिसका नाम है रूरल इंडियन मार्केट। तो रूरल इंडियन मार्केट में हर तरीके से सामान मिलते हैं, किसी प्रकार का इंडियन सब्जी मांगे तो मिल सकते। मेरे को याद है मैंने एक बार उसी मार्केट में मैंने गया था 6-7 साल पहले, तो मैंने कुछ भोपला मांगा था, भोपला मेरे को कुछ भोपला चाहिए था। तो मैं सोचा कि भोपला इधर कहाँ पे मिले, तो ऐसा पूरा एक जगह मैंने पूरा घूमा। तो एक माता जी को मैंने पूछी कि कहने के भोपला, वो इंडियन भी थे, तो मैंने उनको पूछा कि कहने के भोपला, तो उन्होंने तो समझ गए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द भोपला। तो उन्होंने बताया कि गो स्टेट एंड यू विल फाइंड आउट द भोपला। तो मैंने उनका बात सुनकर अंदर गए सीधा, तो जाने के बाद देखा कि सही है उधर से भोपला नहीं है, ऐसा कोई इंडियन सब्जी नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता उधर, जिसके लिए कहते कि इंडियन रूरल मार्केट भारतीय कृषिजीवी फार्म। तब उसी जगह पर हर तरीके से सामान मिलते हैं। एक दिन श्री गोपाल जी के अंतरंग प्रिय शिष्य ने उसी मार्केट में गए थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो जाने के बाद उसी मार्केट में एक शॉप था छोटा जिसको बोलते कि गिफ्ट शॉप। तो गिफ्ट शॉप में जाकर उन्होंने देखा कि एक जगन्नाथ जी का बहुत ही सुंदर छोटा विग्रह है, सब जगन्नाथ जी है, बोलोदेव सुभद्रा कुछ भी नहीं है साथ में। तो जाकर उन्होंने ये जगन्नाथ जी का जो विग्रह था उसी विग्रह को उन्होंने लेकर आए, थली में डाल के लेकर आए। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ये लेकर जाता हूँ, ये तो क्या है मेरे को कुछ पता है नहीं, तो मैं लेकर जाता हूँ, जाके हमारे गुरु जी को मैंने भेंट दे दूंगा इसको। तो लेकर आए तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा कि आपने क्या क्या सब्जी खरीद करके लेकर आए। तो उन्होंने बताया इसको बहुत सुंदर इसका लीला का वर्णन भी किया इसमें, तो मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ क्योंकि गौरकिशोर दास जी महाराज मेरे को थोड़ा बताना है। तो श्री गोपाल जी ने उनको पूछ लिया कि अच्छा आपने क्या क्या लेकर आए सब्जी वगैरह क्या क्या लेकर आए उधर से। तो उन्होंने सब दिखाए, तो दिखाने के बाद बहुत सारे आइटम उन्होंने खरीद करके लेकर आए, उसमें से एक साग था, साग बोलता है जिसको, जिसका नाम है कि पुई साग बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है मेरे को पता नहीं, लेकिन पुई बोलता है, पुई एक हरा हरा कलर का होता है। श्री प्रभुपाद जी ने वो साग जब उधर देख ली ना उसी जगह पर, तो देखने के बाद श्री प्रभुपाद जी सरप्राइज हो गए, एकदम विस्मित हो गए, चमकित हो गए कि हाउ यू गॉट दिस। उन्होंने पूछा कि कैसे आपने इसको आप प्राप्त किए हो। तो माता जी ने बताया कि प्रभुपाद मैंने गया था एकदम सीधा मार्केट का अंदर, अंदर जाकर मैंने देखा बहुत प्रकार का सब्जी है, तो मैंने ये सब्जी इतने हरे हरे सब्जी इतना ग्रीन लिफी है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसके लिए मैंने ये लेकर आया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा खुश हो गए, और साथ साथ भोपला बगड़े बहुत सारे रेगुन बगड़े बहुत सारे सामान बगड़े उन्होंने लेकर आए। अब बाद में वो माता जी ने पूछा श्रील प्रभुपाद आई गॉट वन नाइस थिंग फॉर यू। तो प्रभुपाद जी थोड़ा गंभीर हो गए, तो गंभीर होकर पूछने लगे कि नाइस थिंग फॉर मी व्हाट इज दैट। तो क्या आपने लेकर आया? मतलब मैंने एक बहुत ही सुंदर एक डल लेकर आया, डल खिलौना जिसको बोलते हैं, खिलौना हिंदी में। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर खिलौना मैं लेकर आए, व्हिच आई वॉज गिफ्टेड टू यू, मैंने आपको गिफ्ट देना चाहता। गोपा जी ने उनको बताया बड़ा गंभीर से, बच्चे देखो मैं सन्यासी हूं, सन्यासी को किस तरीके से आपने गिफ्ट लेकर आए जो कि आप मेरे को देना चाहते हो। तो बाद में वो माता जी ने अपना थली, जो थली से लेकर आए थे, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं थली लेकर, उसी तरीके से उसी थली से उसी जगन्नाथ जी का जो छोटा विग्रह वो गोपा जी का हाथ में दे दिए, एकदम कागज में मुड़कर। गोपा जी ने सोचा इसके अंदर है क्या कि इतने सुंदर पैकेट की, विदेश में तो ऐसा होता है कि भले भी आदमी खूब कोई भी सामान आप खरीद कर, लेकिन उसका पैकिंग वगैरह बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर पैकिंग। तो श्री गोपा जी ने पैकेट को देखकर एकदम स्तंभित हो गए, उन्होंने सोचा कि इसके अंदर रियली आई एम सरप्राइज अबाउट दैट व्हाट यू ब्रॉट फॉर मी। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो एकदम विस्मित हो गए, चमकित हो गए कि आपने क्या लेकर आए। तो माता जी ने पूछी कि प्रभुपाद यू जस्ट ओपन इट, आपने इसको आप ओपन कर दो, मतलब आप इसको खोलो। तो प्रभुपाद जी ने फिर वो गिफ्ट को उनका हाथ में दे दिया कि ठीक है आप ही खुलकर मेरे को दो। आई वॉज रिशिंग, मतलब मैं ये देखना चाहते कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए। तो माता जी ने वो खुलकर दिए, तो जब प्रभुपाद जी ने देख लिया कि उसका अंदर एक जगन्नाथ जी का मूर्ति है, तब प्रभुपाद जी और माता जी के हाथ में जगन्नाथ जी का मूर्ति, और प्रभुपाद ने स्वयं उनको दंडवत प्रणाम किया। तब माता जी वो सरप्राइज, माता जी ने एकदम चमकित हो गए देखकर, अरे प्रभुपाद जी मेरे को दंडवत कर रहे क्या? तो माता जी ने पूछा प्रभुपाद व्हाट यू आर डूइंग, आपने क्या कर रहे हो, आप मेरे को प्रणाम बोलते? नहीं नहीं मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि आपने जिसको लेकर आए जगन्नाथ जगत तेरे नाथ, आपने लेकर आए कहां से मिली आपने विदेश में? तो माता जी ने बताया कि मैंने वो मार्केट में गए थे, इंडियन रूरल मार्केट, उसी जगह में गिफ्ट शॉप था, गिफ्ट शॉप में जाकर देखा मूर्ति बहुत सुंदर है, तो इसके लिए मैंने वो मूर्ति को लेकर आया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले गो एंड फाइंड आउट अनदर टू मूर्ति सर दियर, गो एंड फाइंड आउट। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो ये जगन्नाथ जगत तेरे नाथ जो कि ब्रह्मांड को मतलब एक साथ में रख सकते हैं, देखो आज आपका जगह में ये आ गया। तब श्री प्रभुपाद ने, जब ये सवेद का कहानी है, सवेद का घटना है, श्री प्रभुपाद जी बताया कि ठीक है आई विल गिव वन लेक्चर रिगार्डिंग दिस डॉल। तो कोई बताया बाद में प्रभुपाद जी इसमें लिखे भी है कि आई वॉज सरप्राइज, अगर मैंने उसको बता दूंगा कि ये स्वयं भगवान है तो विश्वास नहीं करेंगे, विदेशी लोग है थोड़ा कल्चर अलग है तो विश्वास नहीं करेंगे इस बात को। तो मैंने बताया कि ठीक है आई विल गिव वन नाइस लेक्चर रिगार्डिंग दिस डल, मैंने इस डल का ऊपर मैंने एक अच्छा प्रवचन मैं दूंगा शाम को, आप सबको बुला लूंगा। तो शाम को होगा ये बहुत ही छोटा कुटिया, मतलब एक जैसे बोलते हैं कि वन हॉल किचन का माफिक रूम है, जिसमें जिसमें प्रभुपाद जी बैठ गए, उसी समय इतना पैसा सुन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ऐसे एक छोटा एक चादर लेकर प्रभुपाद जी उसी जगह में बैठ गए, और साथ में प्रभुपाद जी हाथ में उसी जगन्नाथ विग्रह को लेकर आए। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि इसमें से कितने सारे व्यक्ति हो जिसको पता है कि हु इज दिस, मतलब ये कौन है। तो सब लोग एकदम आश्चर्यित हो गए कि कौन है, कुछ पता तो है नहीं, इतना बड़ा बड़ा आंख है, आंख का अंदर से लाल कलर की पट्टी है, फिर काला काला है, ये है क्या पता नहीं है कुछ। तो एक भक्त था जिन्होंने बाद में बहुत बड़ा सन्यासी बन गए, जिनका नाम है सत स्वरूप दास गोस्वामी, जिन्होंने ये प्रभुपाद लीलामृत को रचना भी की है। ये सत स्वरूप दास गोस्वामी उसी समय एकदम यंग लड़का, 21 एज ऑनली, 21 साल का है, तो बहुत ही सुंदर सत स्वरूप महाराज का बहुत ही सुंदर बाल था, और बहुत ही सुंदर एकदम जैसा बोलते कि हाईटेक दाढ़ी, दाढ़ी बना था फ्रेंच कट दाढ़ी था उनका, तो बहुत ही सुंदर उसमें लिखा भी है। तो सत्स्वरूप महाराज ने पूछने लगे कि प्रभुपाद ये तो मैंने अपना जिंदगी में ने कभी देखा भी नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते दैट्स व्हाई आई कॉल एवरीवन, आई विल एक्सप्लेन हु इज दिस. तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैंने इसके लिए आप सबको बुलाया हूं कि मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप लोग को ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए. तब प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी का ऊपर बताया. जगन्नाथ जी कृष्ण जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ एक बहुत ही सुंदर भजन है भक्तों ने ठाकुर का. जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सुचिरो नंदन. तो प्रभुपाद जी उस भजन को गाए जय जय जगन्नाथ सुचिरो नंदन. आज जो भजन का लास्ट लाइन में लिखा है जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ. तो प्रभुपाद जी ने ये सेंटेंस को पकड़ लिए जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ. तो प्रभुपाद जी उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन किए कि जगन्नाथ गौरंग महाप्रभु और कृष्ण देयर इज नॉन डिफरेंट. तब सब लोगों ने सोचा एकदम सरप्राइज हो गए. सत्सद महाराज भी एकदम सरप्राइज हो गए थे. उन्होंने पूछने की प्रभुपाद ये सब मूर्ति तो हम लोगों ने जिंदगी कभी देखा ही नहीं. कृष्ण का बहुत सारे पिक्चर हम लोगों ने देखा, कृष्ण का बहुत सारे पिक्चर देखा, महाप्रभु का ऊपर अपने बताइए वो भी थोड़ा थोड़ा जानकारी है, लेकिन ऐसा जगन्नाथ मूर्ति इतना बड़ा बड़ा आंख कैसे हो गए उनको वो जरा बताइए. तब प्रभुपाद जी ने बताया कि किस तरीके से जगन्नाथ जी का इतना बड़ा बड़ा आंख हो गए. तो उसमें से और एक भक्त था जिनका नाम है हृदयानंद गोस्वामी, जो आज भी है. उन्होंने बहुत सारे किताब भी लिखे हैं और प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद का पहला पार्ट तक ट्रांसलेशन किए थे. दशम स्कंद का पहला पार्ट उन्होंने प्रभुपाद जी तक प्रभुपाद जी वो ट्रांसलेट किए थे. लेकिन उसके बाद एकादश स्कंद द्वादश स्कंद और दशम पार्ट का बैलेंस जितने थे जितने सारे किताब हृदयानंद महाराज और प्रभुपाद जी का बहुत सारे अंतरंग शिष्य मिलकर ये बाद में लिखे. तो हृदयानंद महाराज पूछने लगे प्रभुपाद ये जो इतने सारे जो डॉल आपने हाथ में रखकर हम लोग को दिखा रहा है ये डॉल ये पुतली का हम लोगों ने तो इतना दिन तक देखा. आपने दिखाया राधा कृष्ण विग्रह कैसे होता है, गौर निताई का भी विग्रह आपने दिखाया, लेकिन ऐसा एक विग्रह आपने लेकर आए इस डॉल को तो इतना बड़ा बड़ा आंख कभी भगवान का होता है. तो प्रभुपाद जी ने उनको एक्सप्लेन किए कि इस बड़ा बड़ा आंख होने का कारण क्या है. तो सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए. बाद में प्रभुपाद जी ने बताया कि रथ यात्रा उत्सव किस तरीके से पूरी रथ यात्रा उत्सव होते हैं. तो उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा चालू हुई और ये नया जगन्नाथपुरी जिस टॉपिक से आज का इसमें प्रभुपाद जी नए जगन्नाथपुरी में मतलब प्रभुपाद जी बड़ा दुखी थे कि आपना शिष्यों को लेकर मैं जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं कर पाए. तो प्रभुपाद जी ने बताया आप लोग अच्छे से जगन्नाथ जी के सामने आपका प्रेम भक्ति भाव को निवेदन करो कि आपका जगह में भी जगन्नाथ जी आ जाए. जिसके लिए उड़ीसा में बहरमपुर बोल के एक जगह है जहां पे श्री प्रभुपाद जी के अंतरंग प्रिय शिष्य जिनका नाम है पंचरत्न बहु, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक जगन्नाथ मंदिर बनाया बहरमपुर की आगे नाम मैंने भूल गया हूं. तो उसी जगह में एक बहुत ही सुंदर जगन्नाथ मंदिर बनाए जहां पे आज भी इस्कॉन का जितने सारे विदेशी भक्त है जिसका अंदर जाना अलाउ नहीं है. इवन पंडाल लोग ने इतने शक्तिशाली है जगन्नाथ जी का राजा भी कभी कभी इस्कॉन का लीगल लोग को अंदर जाकर मतलब अंदर लेके जाने के लिए प्रयास किए थे लेकिन पंडालों को ने घुसने नहीं दिए किसी को. एक सिर्फ एक ही व्यक्ति इस्कॉन का है जो कि विदेशी होकर भी अंदर तक जा पाए वो है जगत प्रसन्न महाराज. क्यों उन्होंने गए अंदर तो किसी का मन में प्रश्न आ सकता है उन्होंने तो विदेशी है कैसे चले गए, क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकत्व है मतलब इंडियन सिटीजनशिप का जो पेपर है जो उनके पास है जिस लेकर वो अंदर तक पहुंच गए. आज इस तरह का कोई दूसरे भक्त तो आज तक मैंने तो आज तक सुना नहीं, अगर दूसरा कोई गए तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन कोई भी किसी का भी अंदर अलाउ नहीं है क्योंकि जिन्होंने गए जगन्नाथपुरी उनको पता होगा इन्होंने मेन गेट का सामने लिखा दिस इज ऑनली फॉर द हिंदुइज्म ओनली हिंदी पीपुल कैन एंट्री. शिल्पवती का मन में इसके लिए दुख था कि जगन्नाथ मंदिर में आकर मैंने कभी अपना शिष्य को लेकर अपना भक्तबिंदु को लेकर मैंने जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं करा पाया। श्री गोपाल जी ने एक बार अपना शिष्य को लेकर साक्षी गोपाल तक पहुंच गए। साक्षी गोपाल में शुरू बाद में सबका अलाउ था। आज भी कभी कभी कोई कोई पंडित लोगों ने कभी कभी विदेशी लोग को अंदर आने के लिए परमिशन भी दे देते। तो श्री गोपाल जी पहुंच गए थे उसी जगह का साक्षी गोपाल में। साक्षी गोपाल में जब उन्होंने गए तो साक्षी गोपाल में जाकर भी अलाउ नहीं किया कोई किसी को भी। श्री बोबा जी भी अंदर नहीं गए, बाहर बैठ गए एकदम। जो मेन जो साक्षी जिन्होंने गए साक्षी गोपाल मंदिर, उनको पता होगा कि मेन गेट का सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है और उसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर तालाब है, वो आज भी वर्तमान। जिस तालाब का सामने श्री बोबा जी ने अपना शिष्य को लेकर सब बैठ गए उसी जगह पर, और जाकर उन्होंने बताया कि साक्षी गोपाल का कहानी क्या है, किस तरीके से साक्षी गोपाल ने इसी जगह में प्रकटी हुई। इसके लिए श्री गोपाल जी ने अपना शिष्य को लेकर बहुत सारी जगह घूमे। मायापुर बहुत बार गए, सब जगह में गए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने जगन्नाथपुरी पे नहीं निभाया, क्योंकि जगन्नाथपुरी में वो जो एक विधि है, रेस्ट्रिक्शन जो आज भी वर्तमान है, जिसमें लिखा है कि ओनली फॉर द हिंदुइज्म, ओनली फॉर द हिंदू, हिंदू लोग के लिए वो मंदिर है, तो श्री गोपाल जी ने पसंद नहीं किया। इसके लिए श्री गोपाल जी अधिक समय ज्यादा नहीं जाते थे जगन्नाथपुरी दर्शन, कि उनका मन में दुख था बहुत। लेकिन उसी दुख को भगवान ने किस तरीके से निभाया कि जगन्नाथ जी आपने को आप अमेरिका में प्रकटित हो गए, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने जगह का नाम रखा है न्यू जगन्नाथपुर, नॉन डिफरेंस फ्रॉम जगन्नाथपुर। आज जिस तरीके से जो प्रभुपाद जी ने जो जगन्नाथपुरी जो न्यू जगन्नाथपुरी मंदिर जो बनाया अमेरिका में, इस न्यू जगन्नाथपुरी मंदिर नॉन डिफरेंस फ्रॉम जगन्नाथ, और किस तरीके से है जिसका जानकारी नहीं है। ओ सरस्वती महाराज ने बताया कि श्री गोपाल एक देखिए किस तरीके से भगवान भगवान का भक्त को कृपा कर देते हैं। तो श्री गोपाल जी एक बार गए उसी जगह पर जगन्नाथ मंदिर में, अपना दो उसी समय ज्यादा इंडियन शिष्य नहीं थे, दो तीन इंडियन शिष्य को लेकर उन्होंने गए। तो जाने के बाद श्री गोपाल को देखकर जगन्नाथ जी के एक मेन पांडा, उन्होंने जगन्नाथ जी का एक पुष्प हार श्री गोपाल जी को अर्पण कर दिया। आज का दिन में जैसे कि पंडा लोगों ने हर समय पैसा मांगते रहते हैं कि आपको इसी तरीके से दर्शन करना था, इसी तरीके से दान डालो, उसी तरीके से दर्शन करने से दान डालो, तो उसी समय इतना नहीं थे, इतना प्रोफेशनल नहीं थे पंडा लोग, आज का दिन में जितने प्रोफेशनल हो गए। तो गोपाल जी ने ऐसा घुस गए अंदर तक। अंदर जाने के बाद कोई एक पंडा आकर जगन्नाथ जी के बहुत ही बड़ा पुष्प हार प्रसादी माला गोपाल जी का चढ़ा दी, और गोपाल जी ने उसी माला को लेकर चला गए थे अमेरिका तक। और उसी जब ये मंदिर बनाए जगन्नाथपुरी मंदिर, न्यू जगन्नाथपुरी, ये न्यू जगन्नाथ मंदिर जब बनाए उसी जगह पे, जगन्नाथ जी का कृपा रूप से जगन्नाथ जी का प्रसादी माला उसी गर्भगृह में जो गोपाल जी ने स्थापना की थी, गोपाल जी के शिष्य लोगों ने स्थापना की थी। इसी तरीके से विदेश में ये जगन्नाथ मंदिर स्थापना हो, कि गोपाल जी का मन में बड़ा दुखी हर समय कि अपना शिष्य को मैं अंदर लेकर जा नहीं सकता। एक जगह पे लिखा भी है ससुर महाराज कि गोपाल जी साउथ इंडिया दर्शन करने के लिए लेकर गए अपना शिष्य लोग को, हर जगह में लेकर जाते थे एक्सेप्ट जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी और जाते भी थे तो ज्यादा से ज्यादा समय गोपाल जी निभाए कौन सी जगह में, ना हरिदास ठाकुर का समाधि, हरिदास ठाकुर का समाधि या जहां पे बैठकर हरिदास ठाकुर जो करते रहते थे उसी जगह पर। ये दोनों जगह श्री गोपाल जी का सबसे बड़ा प्रसन्न था। आज जहां पे अभी अभी एक बहुत ही सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह बने, बहुत ही सुंदर एकदम समुद्र का तट में, उसी समय गोपाल जी का समय उसी विग्रह नहीं था उसी जगह पर। ये विग्रह मेरे ख्याल से 1982 और 83 में बनाए थे। तो ये लोकनाथ महाराज जी ने बहुत मदद किए थे विग्रह बनाने में, बहुत उन्होंने मदद भी किए थे, धनराशि भी सब कुछ किए थे, पुरी का राजा भी बहुत मदद किए थे। तो उसी समय गोपाल जी ने उसी समुद्र का तट में बैठकर आज सबको देखा, देखो जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा, देखो ध्वजा, इसी ध्वजा देख लिए मतलब आपने जगन्नाथ जी को दर्शन कर लिए। तो ध्वजा का महत्व तो उसी जगह में बैठकर श्री गोपा जी बताते हैं अपना शिष्य। तो शुद्ध भक्त जो होता है दर्शन पवित्र करो ये तो मार्ग। तो श्री गोपा जी का मन में जो विचार था तो भगवान भक्त का मन में जो विचार रहते उसको पूरा कर देता है। इसी तरीका उन्होंने मन में विचार था कि बहन बड़ो दुखी हूं कि जगन्नाथ जी को अपने शिष्य को दिखा नहीं पाता। इसके लिए तो देखिए पूरा विश्व में आजकल ये जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव होता है और पूरा साल भर चलते रहते हैं रथ यात्रा उत्सव। अगर अपनी अच्छे तरीके से देख लेंगे कि पूरा साल में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ विश्व में कहां भी ना रथ यात्रा नहीं निकालते। हमारे मुंबई में देखिए कितने सारे रथ यात्रा होता है। तो इसी रथ यात्रा को देखकर कभी कभी कोई पाखंडी व्यक्ति रहता है जिसका मन में जलन होती है। जलन इस जलन का कारण कभी कभी बोल भी देते कि देखो ये हरे कृष्ण वाला का कुछ काम धंधा नहीं है पूरा साल भर रथ यात्रा निकालते हैं। लेकिन गोपा जी बताए कि ये रथ यात्रा का कारण कि जगन्नाथ जगतेरो नाथ सबको कृपा वर्षा करने के लिए पूरा विश्व ब्रह्मांड घूमते रहते हैं यार सबको कृपा बरसाते रहते हैं। जिसके लिए न्यू जगन्नाथ मंदिर बना है ये न्यू जगन्नाथ पुरी जो कि नॉन डिफरेंस फ्रॉम जगन्नाथ मंदिर। जैसा कि मायापुर में राजापुर है राजापुर का भी जगन्नाथ से विग्रह है उसी विग्रह और जगन्नाथ पुरी का विग्रह में कुछ अंतर नहीं है। इस तरीके से प्रभुपाद जी का मन में जो भावना थी उसी भावना को भगवान ने प्रकट करा दी। तो आज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि उत्सव तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक निष्किंचन भक्त श्री भक्ति श्रेष्ठ सरस्वती ठाकुर उनसे भागवत दीक्षा ग्रहण की थी। किस तरीके से भागवत दीक्षा ग्रहण की भक्ति श्रेष्ठ सरस्वती ठाकुर तो भक्ति श्याम सरस्वती ठाकुर जब ये जगन्नाथ दास बाबा जी को मिलने के लिए गए तो भक्ति श्याम सरस्वती ठाकुर पूछने लगे कि बाबा जी महाराज मेरे को आपसे दीक्षा लेना है मैं आपका चरण में आपने को समर्पित करना चाहता हूँ आपसे मेरे को भागवत दीक्षा ग्रहण करना है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहने लगे ठीक है आपने आए तो बहुत अच्छा है तो मैंने महाप्रभु को पूछ के आता हूँ महाप्रभु को पूछूंगा बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर कहने लगे कि ठीक है तो आप पूछकर आइए मैं काल आकर फिर मिलूंगा आपको। तो दूसरा दिन फिर आए भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर बाबा जी महाराज आपने पूछा महाप्रभु को बोलते हैं मैंने भूल गया था एकदम पूछने के लिए मैंने बड़ा बिजी हो गए थे इतने सारे भक्त लोग आए उनका मिलना जुलना मैं भूल गया मैं आज जरूर मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है दूसरा दिन गए भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर पूछने लगे बाबा जी महाराज हमने पूछ के आया महाप्रभु को तो बाबा जी महाराज आज भी मैंने भूल गया अब कल भी फिर आओ मैं कल पूछ लेता हूँ। तीसरा दिन गए तो भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर को देखकर बाबा जी महाराज कहने लगे मैंने पूछा तो भक्ति चंद सरस्वती को कहने लगे कि क्या जवाब मिले आपको महाप्रभु से अगर अपने कृपा करके बताएंगे तो बड़ा अच्छा है। तो बाबा जी महाराज कहने लगे पंडित तो अभिमानी लौ तो तुम्हें किचू तुम्हारो भक्ति दाग लहे पीछू पीछू मतलब जो पंडित जिसका पंडित व्यक्ति है उसका अंदर बहुत सारे अभिमान मतलब मिथ्या अहंकार रहता है आज इस मिथ्या अहंकार के द्वारा आपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ा दुखी हो गए ये बात सुनकर। भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर कहने लगे कि रामानंद और आचार्य जब दीक्षा लेने के लिए गए थे उनका गुरुदेव के पास 18 बार उन्होंने रिजेक्ट हो गए थे 18 बार रिजेक्ट होने के बाद 18 times रिजेक्ट होने के बाद जब निकाल दिए थे 19 बार में रामानंद की दीक्षा मिले। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भागवत भक्ति देखकर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको भागवत दीक्षा दिलाए। अरे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनका चरित्र में एक आदत है, कभी भी किसी के पास भीख मांगकर नहीं खाते थे, किसी के पास भी नहीं। शमशान भूमि में कोई व्यक्ति को जब जलाने के लिए लेकर आते थे, उसी व्यक्ति का अंदर जो कपड़ा वगैरह रहते थे, उसी कपड़ा को गंगा में धोकर कोपिन पहनकर रहते थे। और कभी कभी ऐसा कोपिन छोड़कर, जैसे कहते कि दिगंबर भाव तना है, दिगंबर भाव से गौर किशोर दास जी महाराज कभी कभी नहीं रहते थे। तो बाबा जी महाराज पूर्वाश्रम का ऊपर ज्यादा कुछ वर्णन कोई शास्त्र में नहीं किए। पूर्वाश्रम ने बंशीदास बाबा जी महाराज का गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का नाम थे बंशी। आज जिनका राई का बिजनेस है, राय जिसको बोलते सोरिषा, सोरिषा शस्य दाना, तो गृहस्थ परिवार के थे, तो गृहस्थ को चलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता था। तो अपना परिवार को चलाने के लिए उन्होंने एक राई का बिजनेस चालू किए थे। जब राई का बिजनेस चालू हो गए, बड़े अच्छे तरीके से उनका संसार बगैर चल रहे, अचानक उनका धर्म पत्नी तिरोभाव हो गए। धर्म पत्नी, जब धर्म पत्नी तिरोभाव हो गए, उसमें वर्णन भी किए हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपना धर्म पत्नी का ऊपर पूर्ण रूप से आसक्ति थी। और इसी आसक्ति का कारण जब धर्म पत्नी वियोग हो गए इसी धराधाम से, तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज दुखी हो गए। दुखी होकर उन्होंने सोचने लगे कि मेरा जीवन को क्या होगा। तब ये सोचकर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज पहुंच गए थे वृंदावन में। वृंदावन में जाकर श्रीमती राधा रानी का बहुत साल तक उन्होंने सेवा की। ये अपना हाथ में उन्होंने पुष्पहार बनाकर भगवान को अर्पण करते थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक ही जगह में बैठकर जब जब वगैरह करते रहते थे, तो बहुत सारे व्यक्ति आते थे उनको मिलने के लिए। तो एक बार एक जमींदार आए, मतलब जमींदार मतलब जिसके पास बहुत सारे धन संपत्ति है, तो उन्होंने आए। तो आने के बाद पूछने लगे कि बाबा जी, उनका एक सेवक था जिसका नाम है, सेवक का है राधानाथ। तो राधानाथ सेवक बाबा जी महाराज को पूछने लगे, बाबा जी महाराज इस जगह का जो जमींदार है, जमींदार का नाम है मनिंद्र मोहन चक्रवर्ती। मतलब चक्रवर्ती मतलब आज भी बंगाल में चक्रवर्ती मतलब ब्राह्मण संप्रदाय का है। तो ये राधानाथ उनका सेवक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का। तो राधानाथ जाकर पूछने लगे कि बाबा जी आपको मिलने के लिए मनिंद्र बाबू मतलब इधर का जमींदार आए आपको मिलने के लिए। तो बाबा जी महाराज तुरंत अपना सेवक को बताए, मुखो दर्शन कोड़ी बोनाता हूं, मैं उनको देखना नहीं चाहता। तो सेवक ने एकदम अचानक स्तंभित हो गए, बात सुनता है बाबा जी महाराज स्वयं जमींदार आए उनको मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहने लगे कि मुखो दर्शन कोड़ी बोनाता हूं, मैं आपका दर्शन नहीं करना चाहता। तो सेवक ने एकदम स्तंभित हो गए बात सुनकर, लेकिन सेवक का साथ साथ कोई हिम्मत भी नहीं था कि बाबा जी महाराज को पूछे ये बाबा जी महाराज स्वयं जमींदार आए आपको मिलने के लिए। कोई बड़ा व्यक्ति आते हैं कभी तो हम लोग को कितने अच्छे तरीके से उनको स्वागत वगैरह करना पड़ता है, लेकिन बाबा जी महाराज ऐसे एक निष्किंचन भक्त, निष्किंचन तत्व पलियो तुम भक्त श्याम सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर लिखा, निष्किंचन कब पलिय तुम्हार। तो बाबा जी महाराज ऐसा के निष्किंचन भक्त की जमींदार का नाम सुनकर कहने लगे, नहीं 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 मुखो दर्शन करी बोना तब, मेरे को उनको दर्शन नहीं करना है। तो अपना सेवक राधानाथ ने एक शौक हो गई सुनकर, तो उन्होंने कहने लगे कि बाबा जी महाराज ये जमींदार है, इलाका का जमींदार है। बोलते नहीं, मैंने आकर उनको मिलू तो उनको ऊपर मेरा आसक्ति हो सकते हैं, उनका संपत्ति के ऊपर मेरा आसक्ति हो सकता है, उनका धन के ऊपर मेरा आसक्ति हो सकता है। अगर उनका ऊपर मेरा आसक्ति हो जाए तो ये भजन में मेरा बाधा हो सकती है, इसके लिए मैं मिलना नहीं चाहता। जमींदार का भी मन में विचार आया कि मैंने इतने बड़े संत बाबा जी महाराज को मिलने के लिए आया तो बाबा जी महाराज इसी तरीके से कह दिए तो मैं कैसे मिलूं। तो जमींदार ने एक पत्र भेज दिया सेवक का हाथ, ये जाओ जाके आप बाबा जी महाराज का पत्र दे दे, लेटर भेज दिए। तो देने के बाद बाबा जी महाराज जो पत्र सेवक को बोला कि ठीक है पढ़ो पत्र में क्या लिखा है, क्योंकि बाबा जी महाराज कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किए। इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा है, कोई कोई बोलते बाबा जी महाराज बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत सारे पढ़ाई की है, कोई कोई कहते नहीं बाबा जी महाराज ने कभी पढ़ाई नहीं की है, मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन नित्य सिद्ध व्यक्ति कहे मूर्ख नहीं है। भक्तिचंद्र सरस्वती ठाकुर बताए नित्य सिद्ध व्यक्ति को वो मूर्ख नहीं है, जो कि नित्य सिद्ध जी हर समय भगवान का ऊपर सोचते रहते, भगवान का ऊपर जिसका चिंतन है हर समय वो कभी मूर्ख नहीं हो सकता। भले ही जागतिक कोई डिग्री नहीं है लेकिन भगवान का ऊपर पूर्णता प्राप्ति है, तो इसी प्रकार व्यक्ति कभी मूर्ख नहीं हो सकता। तो सेवक ने वो पत्र को लेकर आए बाबा जी महाराज के सामने, तो बाबा जी महाराज कहने लगे कि ठीक है आप पत्र मेरे को पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने पत्र पढ़ा है, उसमें लिखा है जमींदार ने लिख दिए कि बाबा जी महाराज मैंने बड़ा आशा लेकर आपको पास आए थे लेकिन आपने मेरे को दुखी बना दिए, आपको मैं दर्शन करना चाहता हूँ लेकिन आपने मेरे को दर्शन नहीं देना चाहता है, तो कृपा पूर्वक अगर आपने कभी अगर दर्शन मैं करना चाहता हूँ अगर कभी भी आप अगर मेरे को बुलाएंगे तो मैं आके आपको मिल सकता हूँ। तो जब बाबा जी ने सेवक ने बाबा जी को बताया तो बाबा जी सेवक को कहने लगे कि सुनो राधना ये जो जमींदार आए ना जमींदार को जाके आप बताओ कि मैंने उनको मिलना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने बताया कि उनके घर में आने के लिए एक दिन, उनके घर में तो मैं जाकर रुक नहीं सकता हूँ, उनका जो टॉयलेट वगैरह है ना तो उसी टॉयलेट में जाकर मैं रह सकता हूँ। तो सेवक को थोड़ा शर्म लगा कि इतने बड़ा जमींदार है इधर का राजा जी इसको कहते, तो राजा को जाकर मैं कैसे कह सकता हूँ कि बाबा जी महाराज आपका टॉयलेट में हल्ला आपका बाथरूम में जाकर रहना चाहते हैं। लेकिन बाबा जी महाराज के सामने झूठ बोलने में मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो जमींदार ने पूछा कि बाबा जी महाराज क्या कह दिया आपको एक वर्ष मिलने के बाद, तो कह दिए कि ठीक है वो आपको मिलेंगे लेकिन आपका घर में नहीं, वो आपका जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह है ना उसी जगह में वो रहना चाहते हैं। जमींदार कह दिया अरे कैसे संभव हो सकता है, ये बाबा जी महाराज है, ये बाबा जी है, अपना घर में मैं लेकर जाना चाहता हूँ कि घर का कल्याण मेरा परिवार का कल्याण हो जाए मेरा बेटा बेटी का कल्याण हो जाए तो इसके लिए मैंने बुला रहा हूँ, लेकिन ये बाबा जी महाराज ऐसा निष्किंचन भक्त तब मतलब इतने निष्किंचन है कि कहने लगे कि आपका बाथरूम टॉयलेट में जाकर मैं रह सकता हूँ। होड़ी भक्त जहां पे भी रहते उसी जगह शुद्ध हो जाता है, होड़ी भजने तब शुद्ध कोड़ी स्थान। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ही सुंदर भजन लिखे होड़ी भजने तब शुद्ध कोड़ी स्थान, मतलब होड़ी भक्त का इतना शक्ति है इतना पावर है होड़ी भक्ति में, कोई अपवित्र जगह में जाकर भी कोई व्यक्ति उसी जगह को पवित्र बना सकते हैं। होड़ी भक्ति भजने हैं शुद्ध कोड़ी स्थान, भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर भजन है। तो सेवक जाके कह दिए इसका ऊपर, तो जमींदार ने एकदम दुखी तो हो ही गए लेकिन मन से भी स्वीकार नहीं कर पाते इसी बात को। लेकिन बाबा जी महाराज को किसी तरीके से मेरा जब उन्होंने बता भी दिए कि है ठीक है तो मेरा घर में आए मेरा बाथरूम में रहते थे, उन्होंने अच्छे तरीके से बाथरूम वगैरह सब साफ कर दिए एकदम चकाचक बना दिए, जैसा आज के दिन में होता है ना कि बाथरूम वगैरह साफ करना है तो हार्पिक डालना पड़ता है हार्पिक, तो उसी तरीके से बाथरूम को अच्छे तरीके से जमींदार ने इतने महान वैष्णव को सेवा करने का मौका मिला बोलकर शास्त्र ने बहुत ही सुंदर बताए। एक जगह में लिखे हैं कि जमींदार ने सज्जन कृष्णी पत्रिका में इसका वर्णन भी किया बहुत अच्छे से कि जमींदार ने स्वयं अपना हाथ में जाकर उसी बाथरूम टॉयलेट को साफ किए थे, क्योंकि ये बाबाजी महाराज आकर उसी जगह में रुकेंगे। सोच लीजिए कि वैष्णव का कितना शक्ति होता है, जिनको सेवा करने के लिए स्वयं जमींदार जाके वो बाथरूम टॉयलेट को साफ किए। तो जब साफ किए, जगन्नाथ दास सॉरी गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज उसी जगह में पहुंचा, पहुंचने के बाद उसी टॉयलेट में जाकर उन्होंने हरि भजन चालू की थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब उन्होंने उसी जगह में गए तो उसी टॉयलेट में जाकर जब उन्होंने हरि भजन चालू की थी, जमींदार ने एकदम एक तरीके से तो दुख है, फिर भी उनको देखकर उनको इतना आनंद मिल रहे थे, इतना आनंद मिल रहा था कि उनको देखने के लिए पहुंच गए थे उसी जगह पर। तो देखने के बाद बाबाजी महाराज का ऊपर उनको इतना श्रद्धा आ गई, इतना श्रद्धा। तो बाबाजी महाराज को कह दिए जमींदार कि बाबाजी मैंने आपको कुछ सेवा करना चाहता हूं। वो तो क्या सेवा करोगे आप? मैं सोच रहा हूं कि आपने जहां पर जो नवद्वीप में आपने जो एक भजन कुटिया बनाया ना, उसी भजन कुटिया से जगह पर मैंने और एक जमीन खरीद करके एक बहुत बढ़िया से आपके लिए कुटिया बनाना देना चाहता हूं। तो बाबा जी महाराज कहने लगे तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गए कि नवद्वीप धाम में अप्राकृत धाम है, आपको हिम्मत कैसे हो गई कि इन अप्राकृतिक धाम को जमीन खरीद करने का, कितना ताकत वाले हो आप। तब बाबा जी महाराज इनको समझाया कि नवद्वीप धाम जो है ये अप्राकृतिक धाम है, इसको कोई खरीद नहीं कर सकता है। किसी दिन महाप्रभु का जन्म स्थान देखने के लिए जब उन्होंने आए, तो जन्म स्थान देखने के लिए इतनी ज्यादा उम्र में जब उन्होंने पहुंच गए थे उसी जगह पर देखने के लिए, तब देखा कि इतने उम्र में जाकर उन्होंने दो हाथ ऊंचे करके गौर 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 बोलने लगे। तो ही बाबा जी महाराज के सामने एक बार एक छोटा बालक आया, तो बालक आकर पूछने लगे बाबा जी महाराज हमारा इधर एक बहुत बड़ा कथाकार आया, तो कथाकार भी आपने जिस तरीके से गौर 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 आप बोलते रहते हो हर समय, तो उसी तरीके से वो कथाकार भी कथा शुरू होने का पहले से अंतिम तक गौर 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 बोलते रहते हैं। तो बाबा जी महाराज जी छोटे बालक को कह दिए कि सुनो बच्चा आपको कुछ पता नहीं है, वो गौर 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 नहीं बोल रहा है। तो उन्होंने बताया कि क्या बोल रहे थे वो टाका 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 बोले, मतलब रुपया दो धन दो धन दो धन दो धन दो धन दो, इसी तरीके से बोल रहे हैं। तो बच्चा ने एकदम बता रहे बाबा जी मैंने तो आप जिस तरीके से बोलते हो ना उसी तरीके से बोल रहे। तो बाबा जी महाराज उसको शांत करे अच्छे से, ए छोटे बालक आप जरा सुनो ध्यान से, कोई व्यक्ति कोई भी भागवत कथाकार भागवत का माध्यम से अगर धन कमाए तो भागवत कथाकार नहीं बन सकता। धन उपार्जन तब भागवत कथाकार, भागवत नहीं तारे तत्व किचुआ। सज्जन दर्शन पत्रिका में इसका कोटेशन भी दिया है, धन उपार्जन तब भागवत कथाकार से ही भागवत कथा नहीं तत्व व्यवहार। मतलब जिनका मन में ये भावना रहते कि भागवत कथा कहने के बाद मेरे को धन कमाना है, तो उसी भागवत कथा में कुछ तत्व वगैरह नहीं रहता, उसी भागवत कथा सुनना और कौवा का मुख से कुछ बात सुनना दोनों एक ही हो जाते। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज इतने कड़क व्यक्ति थे, इस तरीका से उन्होंने अपना भजन को निभाया। तो एक बार बाबा जी महाराज, मैंने पहले ही बताया था कि बाबा जी महाराज किसी को आज भीख मांगकर कुछ खाते नहीं, लेकिन अगर कोई सज्जन व्यक्ति आ गए सामने तो उसी सज्जन व्यक्ति से कभी कभी अचानक कुछ मांग कर लेते थे। तो एक बार एक सज्जन व्यक्ति आए तो बाबा जी महाराज तो बहुत सारे चावल लेकर आए, चावल तो चावल वगैरह दे दिए बाबा जी महाराज को। तो बाबा जी महाराज कह दिए कि आपने इतने सारे चावल अब लेकर आए हो, लेकिन इसी चावल का ऊपर मेरा अगर आसक्ति हो जाए तो मेरा भजन खत्म। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा चावल अब दे के जा सकते हो, क्योंकि आपका इतना प्रेम भक्ति को देखकर मेरे को बड़ा मैं आश्चर्यित लग रहा है इसके लिए। तो उन्होंने देकर गए थोड़ा चावल, बाबा जी महाराज डाल दिए कोटुरी में। ये कोटुरी में रखने के बाद जब उन्होंने उसी चावल का ऊपर पानी डाले, बाद में नमक डाले, दूसरा दिन खाना चालू कर दिए थे प्रसाद रूप से, तब देखा कि उनके सामने एक माता जी पहुंच गए। नहीं, उसके पहले उसी चावल जिस कोटरी में उन्होंने रख दिया था उसी कोटरी का सामने एक सांप घूम रहे थे। सांप तो वही माता जी ने उस सांप को देखा, ये सांप को देखा उसी कोटरी का सामने घूम रहे, तो माता जी सोच ली कि ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि बाबा जी महाराज को जाकर बताना कि वो चावल अशुद्ध हो गई, उसी चावल को आपको नहीं खाना चाहिए, आप दूसरे को चावल मांगा के खाओ, नहीं तो चाहे तो बोलो मैं आपको लिए चावल लेकर आता। तो दूसरा दिन उन्होंने गए तो बाबा जी महाराज जब खाना चालू कर दी थी आचरण को माता जी ने पहुंच गए सामने, तो कहने लगी बाबा जी आपने जो चावल खाया ना उसी चावल का सामने एक सांप घूम रहे थे, मैंने देखा स्वयं। तो बाबा जी महाराज कहते कि माता अगर आप इधर से नहीं जाओगे ना तब मैंने आपका सामने मैं कभी नहीं खाऊंगा, तो आप इधर से निकल जाओ पहले। तो माता जी ने निकल गए तो बाबा जी महाराज सोचने लगे कि देखो माया कितना भयंकर होता है कि ये माया रूपी महिला आकर मेरे को कुछ सलाह देना चाहते हैं। तो माया कितना भयंकर कि इसी सलाह को अगर मैंने ग्रहण करे तो हो सके कि इनके ऊपर मेरा आसक्ति हो जाए, इनका आसक्ति के कारण मेरा भजन बल खत्म हो जाए। तो ऐसे एक निष्किंचन भक्त गौर श्रीदास भगवती महाराज, जिनका समाधि स्वयं भक्ति स्वयं सरस्वती ठाकुर अपना हाथ में किए थे, कहां पे? कुलिया में, कुलिया। भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर आपने हाथ में गौर किशोर दास भाई महाराज का समाधि बनाया था, कहां पे? कुलिया में समाधि दी थी पहला। लेकिन कुलिया गंगा का तट में था और उसी गंगा का पानी आकर जब उसी समाधि एकदम खत्म हो जा रहे थे तब भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर उसी जगह से सब कुछ उठाकर लेकर आके ये जो मायापुर जहां पे चैतन्य मठ है गौर किशोर दास भाई महाराज का, ये दूसरा समाधि, ये जो समाधि है ये दूसरा समाधि है जिसको कहते कि पुष्प समाधि। जो असली समाधि है वो है कुलिया जहां पे हरिदास ठाकुर भी भजन की। पहला समाधि भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास भाई महाराज की कहते कुलिया में, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। आज जब उसी कुलिया गंगा गंगा में एकदम जाने वाले थे उसी जगह से फिर भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर पुष्प समाधि लेकर आए कहां पे? नहीं चैतन्य मठ में। लेकिन असली जो समाधि है जब गोकुलेश्वर दास बाबा जी महाराज का ध्यान हो गए थे उसी ध्यान होने का समय का जो समाधि है वो है कुलिया। तो ऐसे एक निष्किंचन भक्त जिसका कोई भी आसक्ति नहीं था, कोई भी वस्तु को पर उनका कुछ आसक्ति नहीं था, सिर्फ एक ही आसक्ति भजनो बोलो तब संगीत मान। भगवान ठाकुर बड़े अच्छे तरीके से गौर के श्रद्धा भगवान महान को श्रद्धा निवेदन की भजन बल तुम्हार शक्ति कब, मतलब आपका भजन बल के द्वारा अपना भक्ति जीवन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे एक महान वैष्णव सार्वभौम जिसको कहते हुए गौर के श्रद्धा, जो कि पूरा निष्किंचन जीवन बिताया आपने के लिए, कभी किसी के पास कुछ मांग के नहीं खाए, कभी किसी को बस कुछ मंगा भी नहीं था, ना कोई कपड़े मांगे ना कोई खाना मांगे, शमशान भूमि में रहकर उन्होंने अपना भजन किया चालू कर दिया और उसी कपड़ा पर लेकर उन्हें पहनते थे, इसे कौपिन बांध के पहनते थे। कभी कभी ऐसे भी है कि शास्त्र में वर्णन भी की है अगर कभी कोई मृतो व्यक्ति का कपड़ा नहीं मिले तो दिगंबर रूपे ना रोहिण तुम्हार, मतलब दिगंबर रूप लेकर मतलब उलंग होकर एकदम पूरा नेकेट नेकेट होकर घूमते रहते। सज्जन कृष्ण एक सिंह ये भी बताया। और नोटिया प्रकाशन करते ग्रंथ है जिसमें गौर किशोर दास भाई महाराज का ऊपर वर्णन में किए कि जीवन का अंतिम मुहूर्त जब उनका पहुंच गए थे, जो कि बहुपद एक सीरियल हुआ था उसमें भी इसका वर्णन किए है, कि जब एकदम जीवन का अंतिम मुहूर्त पहुंच गए थे गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज को, जीवन को अंतिम मुहूर्त पहुंचने के समय जब देह छोड़ दिए, तब बहुत सारे संप्रदाय आ गए कि कहने लगे कि गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज ने कह दिए कि हमारा ये मृत्यु होने के बाद मेरा डेड बॉडी को लेकर पायर में रस्सी बांधकर पूरा नवद्वीप में घुमाने का। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी समय उसी जगह में नहीं थे। जब उन्होंने सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपको मारो ब्रह्मचारी उपस्थित होइल सबे सबे मात्र दिने करो कहो तुम्हार, उसमें सज्जन कृष्ण बताए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब सुन लिए कि गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का देहांत हो गए, तब उन्होंने उसी जगह में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद बड़ा लड़ाई हुआ था ये संप्रदाय के साथ, भक्ति चंद सरस्वती अपर संप्रदाय के साथ भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर का, जिन्होंने रूपा सीरियल देखा उनको जरूर पता होगा कि 6 नंबर कैसे में इसका विस्तृत रूप से इसका वर्णन है, 6 की 7 6 7 दोनों मिलकर, तो बड़ा विस्तृत रूप से इसका वर्णन भी किए हैं कि गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का जीवन चरित्र को पूरा अच्छे तरीके से उसमें वर्णन किए हैं कि गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज किस तरीके से जीवन को बिताए हैं। और जब उनका देहांत हो गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और बहुत सारे अपर संप्रदाय वाले आकर लड़ाई चालू हो गए, ये कहने लगे कि ये डेड बॉडी मेरे को चाहिए, वो कहने लगी ये डेड बॉडी मेरे को चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे कि सबे तोमा होइल तब अच्छुत ताहार कहारो अधिकार नाई यही देहेर स्पर्श तो तारो, बोलते आप लोग सब अच्छुत हो, किसी का हिम्मत नहीं है देह को स्पर्श करने का, मैं ही सिर्फ एक ही व्यक्ति जो कि स्पर्श कर सकता हूं। इसके ऊपर बहुत ही सुंदर डिबेट वितर्क किए थे उन्होंने, कहो ना किचू कहो तब आर तुम्हारो अच्छुत चरित्र मागी किचु आर, सज्जन कृष्ण ने बहुत ही सुंदर चीज का वर्णन भी किया कि गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का जब ध्यान हो गए थे किस तरीका से भक्ति संत सरस्वती ठाकुर उसी डेड बॉडी को लेकर आए आके समाधि, नहीं तो लोग चाहते थे अपर संप्रदाय बगल है जैसे कि नैरा नेरी कर्ता भजार दल जो 13 प्रकार अपर संप्रदाय का वर्णन है, तो ये अपर संप्रदाय व्यक्ति आकर गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज को चरण में 2 रस्सी बांधकर पूरा नवद्वीप में घुमाना चाहते थे कि जो उन्होंने कह दी कि गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का अंतिम में यही इच्छा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आके बहुत लड़ाई किए, बहुत तर्क वितर्क हुए, बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसी डेड बॉडी को लेकर आके अपना हाथ में उन्होंने कुलिया में समाधि दी। तो ऐसा है साक्षात और वैराग्य मुक्ति जो कि निष्किंचन भक्ति तब, ऐसा एक महान चरित्र है गौर किशोर दास बाबूजी महाराज जिनका तिरुभाव तिथि उत्सव है। तो आज का तिरुभाव तिथि उत्सव में उनका चरण कमल में ये भी निवेदन है कि इसी तरीके से उन्होंने भक्ति हम लोग को भी प्राप्त कराए कि जैसा कि हमारा गुरु परंपरा धारा को पकड़कर हम लोग भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सारे ग्रंथ है गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का पर विशेष रूप से सज्जन कृष्ण ग्रंथ में विस्तृत रूप से इसका वर्णन है। नदिया प्रकाशन ग्रंथ में गौरकिशोर दास बाबूजी का ऊपर एकदम पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किए कि जिस तरीके से टीपा खोला मतलब बांग्लादेश का परमान नदी के सामने टीपा खोला गांव में गौरकिशोर दास बाबूजी ने किस तरीके से जन्म हुआ था उसका ऊपर से एकदम अंतिम तक नदिया प्रकाशन ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज की, श्री गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज श्री भारती महामहोत्सव की, श्री भूपाल की गौर प्रेम पावने। तो आज एकादशी है उत्थान एकादशी, हमारे मंदिर का कार्यक्रम है कि 12 घंटा कीर्तन 9 से 9 बजे तक, तो अभी कीर्तन चालू है तो रात को 9 बजे तक कीर्तन है, कृपा करके सब लोग कीर्तन में भाग लीजिए। और दोपहर को 12 बजे गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का पुष्पांजलि, उसके बाद प्रसाद है। हरे कृष्ण
जाएगा, तो नाच ना करना पड़ेगा। तो भी चलो।